डिप्टी कलेक्टर की कहानी का शेष अंश, पेज 117। वह घर वापस आया तो उसके हृदय में अत्यधिक उत्साह था। और जब उसने यह बताया कि जहां और लड़कों का 15-20 मिनट तक ही इंटरव्यू हुआ, उसका पूरे 50 मिनट तक इंटरव्यू होता रहा और उसने सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए, तो तब यह सभी ने मान लिया कि नारायण का लिया जाना निश्चित है। दूसरे दिन कचहरी में फिर वकीलों और मुख्तारों ने सकलदीप बाबू को बधाइयाँ दी और विश्वास प्रकट किया कि नारायण अवश्य चुन लिया जाएगा। सकलदीप बाबू मुस्कुराकर धन्यवाद देते और लगे हाथों नारायण के व्यक्तिगत जीवन के एक दो बातें भी सुना देते और अंत में सिर को आगे बढ़ाकर फुसफुसाहट में दिल का राज प्रकट करते, आपसे कहता हूँ, पहले मेरे मन में शंका थी। शंका क्या, 16 आने शंका थी, लेकिन आप लोगों की दुआ से वह सब दूर हो गई। जब वह घर लौटे तो नारायण, गौरी और कमल दरवाजे के सामने खड़े बात कर रहे थे। नारायण इंटरव्यू के संबंध में ही कुछ बता रहा था। वह अपने पिताजी को आते देख धीरे धीरे बोलने लगा। सकलदीप बाबू चुपचाप वहां से गुजर गए, लेकिन 2-3 गज ही आगे गए होंगे कि गौरी की आवाज़ उसको सुनाई पड़ी। अरे तुम्हारा हो गया, अब तुम मौज करो। इतना सुनते ही सकलदीप बाबू घूम पड़े और लड़कों के पास आकर उन्होंने पूछा, क्या? उनकी आंखें सुकुचित हो गई और उनकी मुद्रा ऐसी हो गई थी जैसे किसी महफिल में जबरदस्ती घुस आए हों। लड़के एक दूसरे को देखकर शिष्टतापूर्वक होठों में मुस्कुराए। फिर गौरी ने अपने कथन को स्पष्ट किया, मैं कह रहा था नारायण से बाबूजी कि उसका चुना जाना निश्चित है। सकलदीप बाबू ने सड़क से गुजरती हुई एक मोटर को गौर से देखने के बाद धीरे धीरे कहा, हाँ देखिए ना, जहाँ एक से एक धुरंधर लड़के पहुँचते हैं, सबसे तो 20 मिनट ही इंटरव्यू होता है, पर इसने पूरे 50 मिनट। अगर नहीं लेना होता तो 50 मिनट तक तंग करने की क्या जरूरत थी, 5-10 मिनट पूछताछ करते। गौरी ने सिर हिलाकर उनके कथन का समर्थन किया और कमल ने कहा, पहले का जमाना होता तो कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन अब तो बेईमानी वैमानी इतनी नहीं होती होगी। सकलदीप बाबू ने आंखें सुकुचित करके हल्की फुल्की आवाज में पूछा, बेईमानी नहीं होती ना, अब उतनी नहीं होती, पहले बात दूसरी थी, वह जमाना अब लद गया, गौरी ने उत्तर दिया। सकलदीप बाबू अचानक अपनी आवाज़ पर जोर देते हुए बोले, अरे अब कैसी बेईमानी साहब, गोली मारिए। अगर बेईमानी ही करनी होती तो इतने देर तक इनका इंटरव्यू होता, इंटरव्यू में बुलाया ही न होता, और बुलाते भी तो 4-5 मिनट पूछताछ करके विदा कर देते। इसका किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वह मुस्कुराते हुए घूमकर घर में चले गए। घर में पहुंचने पर जमुना से बोले, बबुआ अभी से ही किसी अफसर की तरह लगते हैं। दरवाजे पर बबुआ, गौरी और कमल बातें कर रहे थे। मैंने दूर से ही गौर किया, जब नारायण बाबू बोलते हैं तो उनके बोलने और हाथ हिलाने से एक अजीब सी शान टपकती है, उनके दोस्तों में ऐसी बात कहाँ। आज दोपहर से मुझसे कह रहे थे कि तुझे मोटर में घुमाऊंगा। जमुना ने खुशखबरी सुनाई। सकलदीप बाबू खुश होकर नाक सिकोड़ते हुए बोले, अरे तो उसको मोटर की कमी होगी, घूमना न जितना चाहना। वह सहसा चुप हो गए और खोए खोए इस तरह मुस्कुराने लगे जैसे कोई स्वादिष्ट चीज खाने के बाद मन ही मन उसका मजा ले रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने पत्नी से प्रश्न किया, क्या कह रहा था, मोटर में घुमाऊंगा? जमुना ने फिर वही बात दोहरा दी। सकलदीप बाबू ने धीरे से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छा है। उनके मुख पर अपूर्व स्वप्निल संतोष का भाव अंकित था। 68 दिनों में नतीजा निकलने का अनुमान था। सभी को विश्वास हो गया था कि नारायण ले लिया जाएगा और सभी नतीजे की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सकलती बाबू और भी व्यस्त रहने लगे। पूजा पाठ का उनका कार्यक्रम पूर्ववत जारी था। लोगों से बातचीत करने में उनको काफ़ी मज़ा आने लगा और वह बातचीत के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते थे कि लोगों को कहना पड़ता कि नारायण अवश्य ही ले लिया जाएगा। वह अपने घर पर एकत्रित नारायण तथा उसके मित्रों की बातें छिपकर सुनते और कभी कभी अचानक उनके दल में घुस जाते तथा जबरदस्ती बातें करने लगते। कभी कभी नारायण को अपने पिता की यह हरकत बहुत बुरी लगती और वह क्रोध में दूसरी ओर देखने लगता। रात में सकलदीप बाबू चौंक कर उठ बैठते और अचानक आकर कमरे में लड़के को सोते हुए देखने लगते या आंगन में खड़े होकर आकाश को निहारने लगते। एक दिन उन्होंने सवेरे ही सबको सुनाकर जोर से कहा, नारायण की माँ, मैंने आज सपना देखा है कि नारायण बाबू डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। जमुना रसोई के बरामदे में बैठी चावल पका रही थी और उसी के पास नारायण की पत्नी निर्मला घूंघट काढ़े दाल बीन रही थी। जमुना ने सिर उठाकर अपने पति की ओर देखते हुए प्रश्न किया, सपना सवेरे दिखाई पड़ा था क्या? सवेरे के नहीं तो शाम के सपने के बारे में तुमसे कहने आऊँगा। अरे एकदम, पेज 119। ब्रह्म मुहूर्त में देखा, देखता हूँ कि अखबार में नतीजा निकल गया है और उसमें नारायण बाबू का नाम भी है। अब यह याद नहीं कि कौन नंबर था, पर इतना कह सकता हूँ कि नाम काफी ऊपर था। अम्मा जी, सवेरे का सपना तो एकदम सच होता है ना? निर्मला ने धीरे से जमुना से कहा। मालूम पड़ता है कि निर्मला की आवाज़ सकलदीप बाबू ने सुन ली, क्योंकि उन्होंने भी हंसकर प्रश्न किया, कौन बोल रहा है? डिप्टाइन है क्या? अंत में वह ठहाका मारकर हंस पड़े। हाँ, कह रही है कि सवेरे का सपना सच होता है। सच होता ही है, जमुना ने मुस्कुराकर बताया। निर्मला शर्म से संकुचित हो गई। उसने अपने बदन को सिकोड़ तथा पीठ को नीचे झुकाकर अपने मुंह को अपने दोनों घुटनों के बीच छिपा लिया। अगले दिन ही सवेरे सकलदीप बाबू ने घर वालों को सूचना दी कि उन्होंने आज भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है। जमुना ने अपनी नाक की ओर देखते हुए कहा, सवेरे का सपना तो हमेशा ही सच होता है। जब बहू को लड़का होने वाला था, मैंने सवेरे सवेरे सपना देखा कि कोई स्वर्ग की देवी हाथ में बालक लिए आसमान से आंगन में उतर रही है। बस मैंने समझ लिया कि लड़का ही है, लड़का ही निकला। सकलदीप बाबू ने होश में आकर कहा, और मान लो कि झूठ है तो यह सपना एक दिन दिखाई पड़ता, दूसरे दिन भी हूबहू वही सपना क्यों दिखाई देता? फिर वह भी ब्रह्म मुहूर्त में ही? बहू ने भी ऐसा ही सपना आज सवेरे देखा है। डिप्टाइन ने भी? सकलदीप बाबू ने मुस्की काटते हुए कहा, हाँ डिप्टाइन ने भी। ठीक सवेरे उन्होंने देखा कि एक बंगले में हम लोग रह रहे हैं और हमारे दरवाजे पर मोटर गाड़ी खड़ी है, जमुना ने उत्तर दिया। सकलदीप बाबू खोए खोए मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक दिन रात को लगभग 1 बजे सकलदीप बाबू ने उठकर पत्नी को जगाया और उसको अलग ले जाते हुए बेशर्म महाब्राह्मण की भांति हंसते हुए प्रश्न किया, कहो भाई, कुछ खाने को होगा? बहुत देर से नींद नहीं लग रही है, पेट कुछ मांग रहा है। पहले मैंने सोचा जाने भी दो, यह कोई खाने का समय है, पर इससे काम बनते न दिखा तो मैं तुमको जगाया। शाम को खाया था, सब पच गया। जमुना अचंभे के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पति को देख रही थी। दांपत्य जीवन के इतने दीर्घ काल में कभी भी, यहाँ तक कि शादी के आरंभिक दिनों में भी सकलदीप बाबू ने रात में उसको जगाकर कुछ खाने को नहीं मांगा था। पेज 120। वह झुलझुला पड़ी और उसने अपना असंतोष व्यक्त किया, ऐसा पेड़ तो कभी भी नहीं था, मालूम नहीं इस समय रसोई में कुछ है या नहीं। सकलदीप बाबू झेप कर मुस्कुराने लगे। एक दो क्षण जमुना ने आंखें मलकर पूछा, बबुआ के मेवे में से थोड़ा दू क्या? सकलदीप बाबू झट से बोले, अरे राम राम, मेवा तो तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ तुम सो जाओ, भूख भूख थोड़े है, मजाक किया था। यह कहकर वह धीरे से अपने कमरे में चले गए। लेकिन वह लेटे ही थे कि जमुना कमरे में एक छिपुली में एक रोटी और गुड़ लेकर आई। सकलदीप बाबू हंसते हुए उठ बैठे। सकलदीप बाबू पूजा पाठ करते, कचहरी जाते, दुनिया भर के लोगों से दुनिया भर की बातचीत करते, इधर उधर मटर गश्ती करते और जब खाली रहते तो कुछ न कुछ खाने को मांग बैठते। वह चटोर हो गए और उनको जब देखो भूख लग जाती। इस तरह कभी रोटी गुड़ खा लेते, कभी आलू भुनवा कर चख लेते और कभी हाथ पर चीनी ही लेकर फाँक जाते। भोजन में भी वह परिवर्तन चाहने लगे। कभी खिचड़ी की फरमाइश कर देते, कभी सत्तू प्याज की, कभी सिर्फ रोटी दाल की, कभी मकुनी की और कभी सिर्फ दाल भात की ही। उनका समय कटता ही न था और वह समय काटना चाहते थे। इस बदपरहेजी तथा मानसिक तनाव का नतीजा यह निकला कि वह बीमार पड़ गए। उनको बुखार तथा दस्त आने लगे। उनकी बीमारी से घर के लोगों की बड़ी चिंता हुई। जमुना ने रुआसी आवाज में कहा, बार बार कहती थी कि इतनी मेहनत न कीजिए, पर सुनता ही कौन है, अब भोगना पड़ा ना। पर सकलदीप बाबू पर इसका कोई असर न हुआ। उन्होंने बात उड़ा दी। अरे मैं तो कचहरी जाने वाला था, पर यह सोचकर रुक गया कि अब मुख्तारी तो छोड़ने ही है, थोड़ा आराम कर लें। मुख्तारी जब छोड़नी होगी होगी, इस समय तो दोनों जून की रोटी दाल का इंतजाम करना है। जमुना ने चिंता प्रकट की। अरे तुम कैसी बात करती हो, बीमारी हैरानी तो सबको होती है। मैं मिट्टी का ढेला तो हूं नहीं कि गल जाऊंगा, बस एक आध दिन की बात है। अगर बीमारी सख्त होती तो मैं इस तरह टनक टनक कर बोलता। सकलदीप बाबू ने समझाया और अंत में उनके होठों पर एक छीण मुस्कान खेल गई। वह दिन भर बेचैन रहे, कभी लेटते, कभी उठ बैठते और कभी बाहर निकलकर टहलने लगते। लेकिन दुर्बल इतने हो गए थे कि 5-10 कदम चलते ही थक जाते और फिर कमरे में आकर लेटे रहते। करते करते शाम हुई और जब सकलदीप बाबू को यह बताया गया कि कैलाश बिहारी मुख्तार उनका समाचार लेने आए हैं, तो वह उठ बैठे और झटपट चादर ओढ़े, हाथ में छड़ी ले पत्नी के लाख मना करने पर भी बाहर निकल आए। दस्त तो बंद हो गया था पर बुखार अभी भी था और इतने ही समय में वह चिचड़े हो गए थे।